हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अब जैसे ही अमित ने करिश्मा जी की बात सुनी और वो तुरंत आगे बढ़ा था उनके पैर छूने के लिए। जैसे ही वो झुका, करिश्मा जी पीछे हो गई थी और कहने लगी थी, बस बस इन सब की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त अमित का दिल तो करिश्मा जी का गला दबाने का कर रहा था, लेकिन उसे यहां पर अपनी अच्छाई वाली छवि को बरकरार रखना था। वेल, तभी अमित की नज़र किसी और पर नहीं बल्कि अमरेंद्र जी पर पड़ी थी। अमरेंद्र जी को देखकर अमित का दिल अंदर अंदर जल भुन उठा था, क्योंकि वो अमरेंद्र जी को अपनी आंखों के सामने कभी भी नहीं देख सकता था। वो उनसे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत किया करता था, क्योंकि अमरेंद्र जी की एक गलती की वजह से उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ एक सफ़ेद जिन के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के कारण जंगलों में भटकने पर मजबूर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसकी माँ का असली रंग रूप और उसके सारी शक्तियाँ सब चीज़ जा चुकी थी और वो एक बूढ़ी औरत की ज़िंदगी गुजार रही थी। इतना ही नहीं, भले ही अमित को काली शक्तियों के गुरुदेव ने पाला था, लेकिन वो बिना माँ बाप के पला था, तो ये उसके लिए एहसास कभी कभी भी उसकी ज़िंदगी में नहीं भरने वाले थे। वेल, लेकिन वो अभी वो अपना गुस्सा अपने चेहरे पर नहीं ला सकता था, और अमरेंद्र जी की ओर देखते हुए क्या उसने उन्हें ग्रीट किया था? वो जल्दी ही करिश्मा जी ने अमित से कहा था, देखो अब मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, अमन अभी तुमसे कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि अमन तुम्हें पहले अपना दोस्त समझा करता था, लेकिन अब अमन को ये पता चल चुका है कि तुम उसके दोस्त नहीं हो बल्कि उसके सौतेले भाई हो। जैसे ही अमित ने ये बात सुनी वो मन ही मन में खुश हो गया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसने जो प्लान किया था वो उसका पूरा हो चुका था। तभी करिश्मा जी ने अमित की ओर देखकर कहना शुरू कर दिया था, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हमने सुना है कि तुम शादी करने वाले हो, तो हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारी शादी के सारे फंक्शन यहीं हमारी हवेली से ही होंगे। तब अमरेंद्र जी थोड़ा सा आगे आए थे, क्योंकि करिश्मा जी बड़ी ही बेरुखी से बात कर रही थी, तो अमरेंद्र जी को वो कुछ खास पसंद नहीं आया था, तो इसीलिए वो अमित के सामने जाकर खड़े हो गए थे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगे थे, मैं तुमसे सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ बेटा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। और तुम्हारी माँ के साथ भी मेरी वजह से बहुत बुरा हुआ है, हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कहकर अमरेंद्र जी ने रोने वाली शक्ल बना ली थी। वहीं अमित अब काफ़ी ज़्यादा कश्मकश का शिकार था, उसे यहाँ पर अपनी एक्टिंग शुरू करनी ही थी, इसलिए उसने अमन और देखते हुए कहा था, अमान यार ये सब क्या हो रहा है यार, ये अंकल मुझे इस तरह से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? और आंटी क्या कह रही है, मेरी शादी भला यहाँ क्यों होगी? अमित तो सीधा सीधे तरीके से उनके मुंह से सारा सच सुनना चाहता था, इसीलिए उसने ये बात को गोलमटोल घुमाना शुरू कर दिया था। तब अब अमन थोड़ा सा आगे बढ़ा था और अमित की ओर देखकर कहने लगा था, वो मुझे भी पहले नहीं पता था, पर मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ के साथ मेरे पिता का रिश्ता था और उसके बाद ही तुम पैदा हुए थे, और पिताजी तुम तो जानते ही हो कि पिताजी कितने समय से विदेश में रह रहे थे, और अब क्योंकि ये लौट कर आए हैं तो उन्होंने ही बताया है, तुम्हारे बारे में बताया है, और हमें ये भी पता चला है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी एक अनाथ आश्रम में गुजारी है। ये सुनते ही अब अमित ने जोरों से रोना शुरू कर दिया था और बोला था, अमान्यार तू ये क्या कह रहा है, मेरे माँ बाप तो मेरे बचपन में मर गए थे, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और अचानक से, और तू तो मेरा एक लौता दोस्त था ना, और तू भी अगर हमारे रिश्ते के मायने बदल रहा है। नहीं नहीं बोल दो, ये सब झूठ है, झूठ है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर अमित ने पूरी तरह से रोना शुरू कर दिया था और अपनी एक्टिंग शुरू कर दी थी। तब करिश्मा जी को उस पर थोड़ा सा तरस भी आया था, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को थोड़ा सख्त करते हुए बोली थी, देखो हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई, और इसके लिए हम माफी भी चाहते हैं। और हम तुम्हारी माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकते हैं, और वैसे तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और अमन ने तो तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट अपने ऑफिस में दे रखी है, और इतना ही नहीं, अब हम तुम जो कहोगे तुम्हारे लिए वो घर, वो बंगला, सब कुछ बनाकर तुम्हें तैयार देंगे। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी शादी भी हम यहाँ इस हवेली में करवाएंगे। करिश्मा जी की बात सुनकर अमित का जी गुस्से से जल उठा था और मन ही मन में सोचने लगा था, मेरा इरादा क्या है? मुझे जो चाहिए वो तुम लोग मुझे कभी भी नहीं दे पाओगे, और उसके लिए मुझे वो धोखे से हासिल करना होगा। तिलिस्मी पत्थर मैं हर हाल में हासिल करके रहूँगा। अमित अभी मन ही मन में सोच रहा था तो करिश्मा जी अमित की ओर देखकर कहने लगी थी, अब तुम्हें रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम चाहते हैं कि तुम जिस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो उसके बारे में सब कुछ हमें बता दो, ताकि हम उसे लड़की को भी यहाँ ले आएं, उसके परिवार भी यहाँ रह सकता है, हमें कोई मसला नहीं है। तो अभी तक अमरेंद्र जी जो हाथ जोड़े हुए खड़े हुए थे, तो इसीलिए वो अमित के बड़ी ही बेबस आवाज़ के साथ बोले थे, हाँ बेटा प्लीज़ तुम हमें माफ़ कर दो, मैं ये मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, और अब मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगे। तब अमन थोड़ा सा आगे आया था और वो अमित को कहने लगा था, अमित तो देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और एक ही दिन में इतने सारे चीज़ों के बारे में तुम्हें पता चला है, तो तुम्हें इसलिए ये सब डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, जिसकी भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, पर हम जो भी पापा उस वक्त पिताजी से गलती हुई थी उसके मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमें एक मौका जरूर दोगे। अगर तुम अपनी होने वाली बीवी को लेकर यहाँ ऐसा बंगले में आ गए और अपनी शादी तुमने यहाँ करने का फैसला किया, तो हमें लगेगा कि तुमने हमें माफ कर दिया है, और अगर तुम नहीं आए तो हम तो वो भी तुम्हारा फैसला अपने सरमाथे पर रखेंगे। ऐसा कहकर अमन वहां से चला गया था, और वहीं करिश्मा जी भी एक नजर अमित की ओर देखती हुई अपने कमरे में चली गई थी। अब सिर्फ हॉल में अमरेंद्र जी और अमित खड़े हुए थे। अमित का दिल तो क्या कि वो इस अकेलेपन का फायदा उठाकर इसी वक्त अमरेंद्र जी की जान ले ले, लेकिन अब उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आ चुका था, इसीलिए उसने अमरेंद्र जी की ओर देखते हुए कहा था, आखिर क्यों किया आपने मेरी माँ के साथ ये सब? अगर आप ये सब नहीं करते तो आज शायद मेरी भी जिंदगी भी अलग होती, मेरे भी माँ बाप होते, मैं भी राजी खुशी अपने परिवार के साथ रह रहा होता। तब अमरेंद्र जी, जो कि कब से अपने आप को रोके हुए थे, वो पूरी तरह से इमोशनल हो चुके थे और कहने लगे थे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, लेकिन बेटा प्लीज मुझे एक मौका दो, प्लीज मुझे एक मौका दो। ऐसा कहकर अमरेंद्र जी पूरी तरह से रोने लगे थे, और अमित मन में हंसने लगा था और कहने लगा था, बेवकूफ चिन, अब देखो मैं तुम लोगों के बीच रहकर तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ,
और अपने सारे के सारे प्लान कैसे सक्सेसफुल करवाता हूँ। ये सोचते हुए अमित एक शैतानी हंसी हंसने लगा था, लेकिन जब भी अमरेंद्र जी उसकी ओर देखते तुरंत वो अपनी हंसी गायब कर 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 रोनी सी शक्ल बना लेता था। जब अमरेंद्र जी कितने ही देर तक अमित के सामने खड़े रहे और हाथ जोड़ खड़े रहे तो अमित को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और फिर उसने अपनी एक्टिंग आगे बढ़ाते हुए थोड़ी देर बाद उसने अमरेंद्र जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया था और कहने लगा था, मैं नहीं जानता कि आपने मुझे किन गुनाहों की सज़ा दी है, लेकिन आप मेरे बाप हैं, आपके साथ रहने का मैं बचपन से सपना देखा है, बचपन से इस बात के बारे में सोचा है कि मेरा बाप होगा तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, और अगर आज मेरा आप मेरे सामने आया है तो मैं उसे इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल मैं आपके साथ रहूँगा, और मैं तो आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे अपने साथ 6-7 दिनों के लिए रखना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहकर बातों ही बातों में मक्कार अमित ने अमरेंद्र जी को ताना भी मार दिया था, लेकिन अमरेंद्र जी की आंखों पर उस वक्त एक कड़ी पट्टी पड़ चुकी थी, इस वक्त वो बाप के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। वहीं दूसरी ओर तारापरी अपने कमरे में आने के बाद अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए बगीचे की ओर रवाना हो चुकी थी, क्योंकि उसे सोनल परी से भी मिलना था जो बगीचे में ही रह रही थी। जैसे ही तारापरी गायब होकर दादा महाराज के पास गई, दादा महाराज उसे देखकर मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे थे, क्या हुआ तारा बेटी? सोनल परी ने बताया कि तुम कुछ परेशान हो, तारा को देखते ही दादा महाराज ने उसे कहा था। तब तारा थोड़े से मायूस शक्ल के साथ दादा महाराज के सामने उन्हें सलाम पेश करने के बाद बोली थी,
दादा महाराज, मैं नहीं जानती कि आपने अमित को क्यों हमारी जिंदगी में आने के लिए कहा है। क्या आप अमित की सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं? जैसे ही तारा ने ये कहा, दादा महाराज हैरान हो गए थे और कहने लगे थे, आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? अमित की कैसी सच्चाई तुम जानती हो? मुझे अमित के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जब मैं अमित तुम दोनों का पीछा करता हुआ इस बगीचे में आया, तभी मुझे उसके अंदर से अपने खून की झलक दिखाई देने लगी थी, और इसीलिए मैंने उसके बारे में अमरेंद्र को बताया, और साथ ही साथ मैंने अमित के बारे में जानने की कोशिश की थी और उसके बारे में अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा, लेकिन मैं इतना ही जान पाया कि वो एक नॉर्मल इंसान था और इंसानों की जिंदगी जी रहा था। तो फिर तुम मुझसे क्यों नाराज हो? और ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता है? दादा महाराज की बात सुनकर तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो कहने लगी थी, दादा महाराज, मैं आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर समझती थी, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि अमित का सच आपके सामने क्यों नहीं आया? आखिरकार क्यों अमित का कोई भी सच आप नहीं जान पाए? अमित काली शक्तियों का मालिक है, इतना ही नहीं, काली शक्तियों का होने वाला महारक्षक है। क्या आ आ आ आया या आया? जैसे ही दादा महाराज ने ये सुना, वो पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहने लगे थे, तारा बेटी, क्या कह रही हो तुम? लेकिन हमने तो अपनी शक्तियों द्वारा उसके बारे में सारा सच जानने की कोशिश की थी, लेकिन हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तभी तारा ने जो भी अमित का राज था, वो सारा का सारा राज दादा महाराज के सामने कह दिया था, और ये भी बता दिया था कि किस तरह से अमित अमन का जानी दुश्मन है और उसने अमन को परेशान करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया है। जादुई बिच्छू, काली शक्तियों की छिपकली तक उसके पास भेज दिया है। इतना ही नहीं, उसने एक बदसूरत बुढ़िया को भी अमन के पीछे लगाया हुआ है, ताकि उसके जिस्म का प्रयोग करके वो अमन के अंदर का तिलस्मी पत्थर हासिल कर सके। अब जैसे ही सारा सच दादा महाराज के सामने आया, उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और वो कहने लगे थे, लेकिन बेटी, अब हम क्या करें? हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें तो लगा था कि हमारे बेटे की ने जो गलती की थी, जिसकी वजह से काली शक्तियों की औरत जंगलों में रहने पर मजबूर हो गई थी, और हमारा बेटा इतने दिनों तक कैद रहा था, तो हमें लगा कि उसे बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, तो बस इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा इंसाफ दिलाने के लिए अमरेंद्र को उसके बारे में बताया, लेकिन हमें इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। अब क्या करें? तभी तारा दादा महाराज को परेशान होते देखकर कहने लगी थी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है दादा महाराज, मैं कुछ न कुछ करके अमित की सच्चाई पूरे घर वालों के सामने लेकर आऊंगी, और वैसे भी अगर हमने पिताजी को अमित के बारे में कुछ भी बताया, तो वो हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। उनकी आंखों पर इस वक्त अपने बेटे की मोहब्बत की झूठी पट्टी लगी हुई है, और जब तक झूठ की पट्टी उनकी आंखों के पर रहेगी, वो हम सबको अपना ही दुश्मन समझेंगे, हमारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। दादा महाराज को सच्चाई नजर आने लगी थी, वो कहने लगे थे, बेटी, शायद तुम एक परी हो, इसीलिए तो आसानी से उसके राज को जान गई, लेकिन हमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि काली शक्तियों के पास ये शक्ति होती है कि वो आसानी से अपनी शक्तियों को सब लोगों को छुपाकर रख सकते हैं, इतना ही नहीं, अपने आप को नॉर्मल इंसान दिखा सकते हैं। क्या करेंगे दादा महाराज? अमित का सच जानने पर क्या तारा वक्त रहते अमित का सच अमन के सामने ला पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।